कि यही चीज है जो हमने कल भोगी थी, यही चीज है जो आज हम भोग रहे हैं। हम एक रूटीन में है, सिर्फ एक चक्र हमारे
मन में है, हम चलते चले जाते चलते चले जाते हैं। कहते हैं कि संसार का भाव बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है संसार का वेग, और इतनी तीव्रता में हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि कहां कहां जरा देर के लिए रुके थे। ये जरा देर के लिए रुकना तो है, इस संसार के तीव्र प्रवाह में हम जरा देर के लिए मनुष्य पर्याय में रुक गए, यहां पर हमने संबंध स्थापित किए, मैं और मेरा कहना शुरू किया, और जो भी हमारे हाथ में आई उसको हमने भोगना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि इस भाव में थे हम, तो हम तो भाव में थे, जो भाव से ठहर गया है वो अपने को पा लेता और भाव में तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमने ये सोचा कि इस भाव में भी हमें बहुत कुछ मिल रहा है। देखो ना, जो मेरा बेटा मिल गया, मैं यहाँ पर जन्म मैंने लिया, इतना बड़ा परिवार मिल गया, इतने धन पैसा मिल गया, लेकिन ध्यान रखना ये धन पैसा और ये परिवार ये संपत्ति ये कई कई बार हमें मिल चुकी है, लेकिन हमें हर बार यही लगता है कि ये नई है। और जिसको एक बार ये लगने लगता है कि ये संसार मैंने कई कई बार भोगा है, उस आदमी को शायद दूसरी बार भोगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग इस चीज को झुठलाना चाहते हैं कि हमने कई कई बार भोगा है, हम तो यही नाम के चलते कि हमने तो पहली बार, हमने तो फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन पहली बार लिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना हम इसी ईयर में कई कई बार एडमिशन ले चुके। अगर हम एक बार फर्स्ट ईयर में पास हो गए तो होते तो शायद फर्स्ट ईयर फिर से न करना पड़ती। कॉलेज का नियम तो यही है कि एक बार पास हो गए तो दूसरी बार, अगर एक बार आदमी होकर के सही आदमी हो गया हो तो एक बार आदमी सही तरह से जी लिया होता तो दूसरी बार संसार में जीने के लिए नहीं आना होता। हम तो अपनी फेल होते चले जा रहे हैं, नाम नहीं रहे कि हम पास हो गए, पूरी जिंदगी हमने कितना काम किया, हमारा नाम तो है पत्ती पर लिखा जाना चाहिए था, लेकिन पत्ती पर लिखा जाने से कुछ नहीं होने वाला है। हम ये सब कुछ कई कई बार कर रहे हैं, ये बात अगर हमारे ध्यान में आ जाए तो फिर यहाँ अहंकार और ममकार दो चीजें नहीं हो सकती। जिसने मैं और मेरा पन छोड़ दिया उसने प्राण धर्म का पालन कर दिया, जिसने ये समझ लिया कि मैंने तो कल इसको भोगा था, आज क्या भोगना है, यही सत्य है जो कि कल किया था वही सब आज कर रहा हूं। जिसको ये बात दिमाग में आ जाती है वो दूसरी बार भोग नहीं सकता। एक बार आदमी ने हाथ डाल दिया और जलने का अगर वाकई एहसास हो गया है तो आदमी अगर सही होगा ईमानदार होगा तो दूसरी बार आग में हाथ नहीं डालेगा। लेकिन हमारी बेईमानी इतनी है कि एक बार हाथ डालने के बाद भी बच्चा तो एक बार फिर भी समझ जाता, लेकिन बड़ा आदमी एक बार हाथ में डालने के बाद मैं हाथ में अंगारे लिए लोगों से पूछता हूं कि कोई मुझे अंगारे की तासीर बता दे। मैं दूसरे से पूछ रहा हूं कि भाई मेरे हाथ में अंगारा मुझे बताओ गर्म होता है कि नहीं होता। अरे भाई तुम्हें खुद महसूस करना है, हो रहा है महसूस, लेकिन दूसरे से पूछते फिर रहे हैं कि क्यों भाई तुम्हें सुख मिला, तुम्हें सुख मिला, तुम खुद देख रहे हैं कि तुम्हें संसार में आकर के कभी सुख नहीं मिला,
लेकिन हम सिर्फ दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक चीज से दूसरी चीज पे चले जा रहे हैं। ठीक है, एक घर में सुख नहीं मिला दूसरे में मिलेगा, इसको छोड़ो दूसरा छोड़ो, उस लड़के में सुख नहीं मिला उसमें मिलेगा सुख, इस चीज में सुख नहीं मिला, इस पैसे में सुख नहीं मिला दूसरे में मिलेगा, लेकिन एक के बाद एक के बाद आप सब कुछ भोग करके देख लेना, सुख अगर यहाँ पर होता तो मिलता, जहाँ सुख है ही वहाँ वहाँ हमने खोजा है, और जहाँ सुख था वहाँ हमने खोजने की कोशिश नहीं की। हमें आज ये कोशिश करनी है कि जहाँ हमने कई कई बार जाकर के देख लिया, जहाँ बार बार भोग करके देख लिया वहाँ सुख नहीं मिला, तो कम से कम उसको इतना तो जान लो कि यहाँ सुख नहीं मिलेगा। और जो इतना जान लेता है कि ये सपना है तो सपना तो जागते ही साथ टूट जाता है। हमने अभी अपने सपने को सपना मान करके नहीं चल रहे, हम अपने सपने को सत्य मान करके चल रहे हैं, जब तक सपना सत्य मान के चलेंगे तब तक सपना टूटने की बात ही नहीं है। हम तो ऐसे हैं कि जाग भी गए हैं तो भी सपना है, और एक सोने का सपना होता है, दो तरह के सपने होते हैं। एक राजा साहब थे, उनका एक ही लड़का था और वही राजकुमार था, और उसी को उत्तराधिकार मिलने वाला था। मैं छोटी सी कहानी कहके अपनी बात और दूसरी करनी है मुझे, इसलिए इस बात को निपटाए देता हूँ। क्या जी की बात करनी है, क्या हुआ कि राजा साहब के एक ही लड़का था और बड़ा प्यारा लड़का था, उनका बहुत सुंदर था, बहुत बलिष्ठ था, सारी बातें थी जैसी एक राजकुमार में होनी चाहिए। और एक बार की बात है कि वो बीमार पड़ गया, हर आदमी बीमार होता, वहां पर आदमी जन्म लेता बीमार पड़ता, जरा आती उसको बड़ा पाता और उसके बाद मरना होता, ये बिल्कुल तय है। वही राजकुमार की जिंदगी में आया कि वो राजकुमार बीमार, राजकुमार बीमार हो गया, राजा का एक ही लड़का था, आपका एक ही लड़का हो तो आप दुकान जाना छोड़ देंगे, अगर लड़का बीमार हो जाए 50,000 सौ लागे खड़े कर देंगे,
और राजा था तो 50 नहीं, वो तो 2,000 खड़े कर सकता था, जितने राज्य वैद्य थे और जितने हकीम थे, जितने डॉक्टर थे, सब आकर के चक्कर लगा रहे थे। राजा साहब जहां एक कुर्सी पर बैठे लड़के के पास से फिर उठे नहीं, 3 दिन 3 रात ऐसे गुजर गए। राजा साहब तक के मत में हुए कि लड़का पड़ा हुआ और होश में भी नहीं है, बोल भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा उसका, कैसा होगा, बड़े परेशान थे। और अब 3 दिन तक आदमी जागता रहे ना तो हो सकता थोड़ी देर के लिए झटकी लग जाए, और राजा साहब को जरा देर के लिए झटकी लग गई और राजा साहब ने एक सपना देखना शुरू किया। राजा साहब का सपना बड़ा सुंदर था, उन्होंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े राजमहल में हूं और मेरे 12 लड़के हैं, 12 लड़का लड़के हैं और एक से एक लड़का है, कोई लड़का किसी दूसरे से कम नहीं है, सब तो ये कहें कि सब एक दूसरे से बढ़ करके हैं, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास बल है, किसी के पास कोई विद्या है, किसी के पास कुछ है, सबके पास एक से एक चीजें हैं और 12 लड़के हैं और मैं बड़े सुख के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। इतने में जो है बेटे ने बहुत जोर से चीख मारी और रानी साहब बाजी देखो क्या हुआ उसके लड़के से, देखा नींद खुल गई उनकी, सपना टूट गया, नींद खुल गई। राजा साहब ने देखा तो बेटा मर चुका था। रानी चिड़िया करके वो करी, राजा साहब चिड़िया करके हंसने लगे। रानी ने कहा कि अरे तो पढ़ना बैठ गए तुम्हारे लिए जो चिड़िया करके और हंस रहे हो, कहीं पागल तो नहीं हो गए? तो मम्मी पागल नहीं हो गए, मैं तो ये सोच करके हंस रहा हूं कि वो जो 12 सपने के थे वो मर गए, वो चले गए, उनके रंग ये एक चला गया स्कूल में जाऊंगी। वो भी एक सपना था जिसने उन्होंने इन 12 लड़कों को अपना माना था, वो भी एक शायद लगता है वो भी एक सपना है जिसको जिन्होंने अपना बड़का माना है, मुझे मालूम पड़ गया उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं था, वो छोटे छोटे वक्त का सपना था, ये जिंदा जिंदा जीते जीते वक्त का सपना है, दोनों सपने में ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि यहां जिंदगी सिर्फ एक कठपुतली की तरह, एक कोली के भाई की तरह, कभी देख लेना आपकी टूथपेस्ट करने से सोने तक क्या हम कितनी चीजें रिपीट नहीं करते, वही सारी चीजें करते हैं, यहां से चलते हैं और यहां तक आ जाते हैं। कोली से कोली मालूम पड़ता कि वो इतना ज्यादा चल गया, आंख पर पट्टी बांधी जाती कोली के बैल के आंख पर, और वो घूम करके शाम को देखता कि कुछ नहीं चले, नथिंग, हम तो यही से यही करे हैं, हमने कोई घूमने तो नहीं थी, और ऐसे ही हमको लगता है सुबह से शाम तक घूम करके वहीं आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमने कहां किस किया है, हम तो जैसे थे वैसे ही खड़े हैं, अब तो नया शुरू करना है, अब भी जैसे कोली का बैल सोचता कि कुछ नहीं चला, अभी यहीं से शुरू किया था यहीं खड़े, फिर से शुरू कर देता है वो, फिर उसके पीछे हंटर पड़ता है। और ऐसे ही हमारे भी अज्ञान की वजह से हमारे हाथ पर पट्टी बांध करके हम संसार में चले आते हैं और एक के बाद एक सारी चीजें करते जाते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो किया उससे सुख मिला या नहीं मिला। आज का दिन सिर्फ इस बात के लिए है कि हम सोच लें कि जो जो हमने किया उसमें कभी सुख मिला या नहीं, और ये ध्यान रखना कि जब आदमी को अतीत में सुख नहीं मिलता तो भविष्य के सपने बनाता है, वर्तमान में नहीं जीता। जो मिला उसको नहीं देख पाता वो तो ये देखता है आज ये सब्जी, अरे वो एक दिन बनाई थी ये बहुत अच्छी लगी थी, भैया आप की खा लो, अब जो हाथ में है सोच पाई मकई टूट गया, लेकिन हम जो खाते खाते भी कहते तुम लोग ये रेस्टोरेंट में वो कहा नहीं है जो कहा आया था, मतलब तुम्हें क्या चाहते हो आपको इससे भी अच्छा बनाना, कल कल की गुंजाइश आपने निकाल ली है, आपको मैं खाई लेता हूं, लेकिन बड़े वो उत्साह बना था मेरे दिन में बहुत अच्छा बना था। अब वो जो बनाने वाला वो सुन रहा है कि उनको ये अच्छा नहीं बता, कल इससे भी अच्छा बनाना। हम अतीत की याद करके भविष्य का इंतजाम कर लेते हैं और वर्तमान में तो जो हम भोग रहे हैं तो वो भोगते ही चले जाते हैं। अतीत का एक बार जिसको ये ख्याल आ जाए कि नहीं हमने अतीत में ऐसा कई बार करके देख लिया है, उस आदमी को फिर से इस चीज को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात हमारे मंदिर, ये बात हमारे गुरु, ये बात हमारे शास्त्र हमेशा हमेशा से कहते आए हैं। हमने कभी भी इस बात को सीखने और समझने की कोशिश नहीं की आखिर मंदिर किस लिए आते हैं, आखिर महाराज के पास किस लिए आते हैं, मंदिर हमें क्या सिखाते हैं और महाराज हमें क्या सिखाते, ग्रंथ हमें क्या सिखाते, सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं कि तुमने जो कई कई बार भोगा एक बार अंधा तो कर लो कि तुमने जो कई कई बार किया है आज नई बार नहीं, तुम यहां पहले आदमी नहीं है जो कि यहां आया और तुमने पहली बार पीना शुरू किया हो, नहीं तुमसे पहले बहुत सारे लोग आए, तुम्हारे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें कई कई बार यहां पर आओगे एक बार की वासना तो खत्म कर दो, बार बार आने जाने की वासना, ताकि तुम्हें बार बार आना जाना ना पड़े। और ये आने जाने की वासना क्यों होती है, जो हमारे नई सांस की वजह से होती है, हमारी उल्टी सांस की वजह से होती, कैसी सांस की वजह से, कि संसार में सुख मिलेगा, जो संसार में सुख मान के चलता है वो संसार कभी नहीं छोड़ सकता, वो एक बार मान के चलता कि संसार में अभी तक सुख नहीं मिला और मुझे संसार में सुख नहीं मिलेगा, वो संसार से बिल्कुल उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है, जो संसार के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है, जो राग को हटा करके वैराग की ओर चलना शुरू कर देता है वो जीत जाता है। ये राग आग बढ़े सदा पाते समान व्रत के लिए सिर भजे विषय कटाए त्याग अब निध पद दे कहां रखे पर पद में तेरे पद ये नहीं क्यों दुख रहे अब बोल कोई किसी चपद रची दाव मत सीखे अरे एक बार ये दाव अगर सीख गए तो दूसरी बार फिर ये दाव आने वाला नहीं है। एक बार पांसा फेंक दिया फिर जो गोटी निकल गई यानी निकल गई फिर हाथ से पांसा सीता वापस नहीं आता। ये ध्यान रखना कि ये राग जितनी जितनी बार तुमने व्यक्ति के प्रति अपने आप को जोड़ा है उतनी उतनी बार व्यक्ति की गुलामी की है। हम रोए किस वजह से व्यक्ति के छू जाने से और हम हंसे हैं किस वजह से व्यक्ति के आ जाने से, सिर्फ इतनी वजह से हम बस्ती हमारे लिए हमारे ऊपर हावी होती चली गई
ने छोड़ दिया, लेकिन हमें वस्तु ने कभी छोड़ दिया तो हम तो जिंदगी में अन्न का आपको मुश्किल, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। एक नौकर अगर अपने मालिक को छोड़ करके चला जाए तो नौकर को इतनी तकलीफ नहीं होती जिसकी मालिक को तकलीफ होती कि आपको काम ही नहीं चल। तो हम ये पूछते हैं कि नौकर तुम थे कि मालिक वो था? मालिक वो था तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा उसके बिना काम नहीं चलता था, तुम तो उसके नौकर थे। जो आज उसके नहीं होने पर कितना महसूस कर रहे हो कि आज है नहीं वो, इसका मतलब तुम ही कहते थे इसकी नौकरी, वो नहीं कर पाते तुम्हारी नौकरी। लगता तो यही है, ऐसे ही हम भी बस्तियों की नौकरी कर रहे हैं। बस्तियों हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी है, लेकिन हम बस्ती के हो गए। अगर बस्ती हमारी रही आती तो भी ठीक था, हम बस्ती के हो गए तो बस्ती जरा नायमाएं भाई तो हम भी नायमाएं हो जाते। और ये चीज हमें ध्यान में आ जाए कि नहीं भाई, वस्तु अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, वस्तु का भोग करना लेकिन तटस्थ होकर के करना, ये इस वस्तु की वजह से मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन कुछ अलग है। इसको अगर मैंने एक बार भोग के देख लिया इससे सुख नहीं मिलता तो इससे कभी सुख नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। एक कपड़ा पहनने से कभी तकलीफ होती है तो हम सोचते कि जब बदल ले दूसरी शर्ट में अच्छा लगेगा, लेकिन शर्ट और शर्ट तो एक ही बात है, जरा रंग बदल गया है। ये दो रंग दिया जलाने की जी के जी है सब, हमने मुर्दों को बदलते कभी कफन देगा, कभी देखो किसी मुर्दे को कफन बदलते हुए तो ये नहीं चाहिए हम तो ये वाली डिजाइन लेकर के आओ, क्योंकि मुर्दे ने ये कहा कभी कि ये धोती नहीं पहनते हम, ये वाला कपड़ा नहीं पहनते हम, ये वाली डिजाइन नहीं पहनते, आप तो फैशन बदल गया है, वेल बॉटम था हमारे लिए और दूसरी एक तरह की चीज रहा। कभी मुर्दे ने कहा? कभी नहीं कहा। इसको क्या तुम जीवन मानते हो? ये मुर्दे से ज्यादा नहीं है, तुम इसमें बैठे हुए हो इसलिए ये चलता फिरता है, बाकी तो है मुर्दे तो सजाओ। जब इसमें से निकल जाएगा ये दो रंगियां जमाने की बीते जी है सब, ये जितनी भी फैशन, ये जितनी भी बदलावट, ये दो रंगियां रंग बिरंगियां जो हमें दिख रही हैं जमाने की, वो सिर्फ किस वजह से कि हमारे अंदर कोई बैठा हुआ है उसकी वजह से ये जमाना रंग बिरंगा दिख रहा है। जिस दिन वो निकल करके चला जाएगा और हमने नहीं संभाला तो उस दिन ये सब यहीं खड़ा रह जाएगा, फिर ये भी नहीं कह पाएंगे ये बदलो ये बदलो और ये बदलो। आज बदल दो, बदल बदल के पहना लो कपड़े, क्या फर्क पड़ने वाला है, पहना रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि मुर्दे को पहना रहे, जिंदा आदमी कपड़ा नहीं पहनता, ध्यान रखना। चलो जरूरत नहीं है आत्मा को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ये तो शरीर को पहनने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मर गए, तो ये कह रहा हूं कि आप मरे हुए आदमी को पहना रहे हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। जो कपड़े पहन रहा है वो जिंदा नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जो जिंदा है वो कपड़े नहीं पहनता, जो मरा हुआ है जिंदा पहना रहा है जरूर, जिंदा मरे हुए को कपड़ा पहना रहा है, वो ये मान के पहना रहा कि मैं अपने आप पहन रहा हूं। ऐसा धोखा तोड़ देना, ऐसी भ्रांति तोड़ देना कि मैं तो मरे हुए को जिंदा को नहीं पहनाया जाता था कपड़ा, मरे हुए को पहना रहा हूं। अगर इतना करके भी पहनाओगे रोज कि इस मरे हुए को मैंने आज एक कपड़ा पहना दिया, मैंने नहीं पहना, मैं इस कपड़े से कुछ अलग हूं, अगर इतना भी जिंदगी में कर लिया तो फिर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहने हैं मुर्दा कैसी पहने रहेगी, क्या फर्क पड़ता है, इससे गंदा हो गया हो गया साफ कर लेंगे, चल अभी फुर्सत नहीं, अभी तो आत्मा की बात सुनने की फुर्सत है, लेकिन हमें आत्मा की बात सुनने की कम फुर्सत मिलती है, हमें कपड़े धोने की, क्योंकि मुर्दा को पहना है ना, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, चार लोग रस्त में से निकलेगा तो देखेंगे कि मुर्दा निकला और कपड़ नहीं था उसके ऊपर अच्छा था, बड़े आदमी का होता और गंदी शर्ट पहन करके निकले ऐसा हो नहीं सकता, वो तो पहले निकलने से पहले देखेगा कि कपड़े पर जरा ठीक ठाक है कि नहीं, सलवट तो नहीं है नहीं है, अगर तो पहले गंदे कपड़े पहन के धोना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर दूसरे पहन लेगा, घर में पहनने के कपड़े दूसरे, बाहर निकलने के दूसरे, किसके लिए पहन रहे कपड़े, अपने लिए, अपने लिए पहनने होते तो घर में तो पहने थे, अब बदलने की जरूरत है, जो घर में पहने थे बेच पहन के निकल जाते बाहर, ये तो कपड़े दूसरे के लिए पहन रहे तुम, ये जितनी भी बदलाहट है वो सिर्फ दूसरे के लिए है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो अपने लिए करना शुरू कर देता है, जो बाहर के लिए करना छोड़ देता है, इसी का नाम त्याग है। कि जहां जहां हमने देखा कि यहां यहां सुख नहीं है, जो जो करने में सुख नहीं है वो छोड़ के चले जाना, यही त्याग धर्म है, और जो जो हमें करना था वो करते चले जाना, यही त्याग धर्म है। दोनों चीजें त्याग धर्म के अंतर्गत आती हैं। मंदिर में हम क्यों आते हैं, मंदिर में हम क्यों आते हैं, ये सीखने आते हैं कि यहां पर कोई है जिसने सब कुछ छोड़ दिया, गुरु के पास हम क्यों आते हैं कि यहां पर कोई है जिसके पास अब कुछ भी नहीं है, जिसके पास सब कुछ था और अब कुछ भी नहीं, क्या वजह है आज, क्यों इसने सब कुछ छोड़ दिया, हमारे पास सब कुछ है और हमारे पास कोई शांति नहीं है, और इसके पास कुछ भी नहीं और इसके पास शांति, मतलब तो कुछ होता होगा। मुझे क्या चाहिए है, सब कुछ चाहिए है कि शांति चाहिए है, अगर मुझे सब कुछ चाहिए है तो इसके पास आने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे शांति चाहिए है तो इसके पास आकर के और सब कुछ लेकर के आए कोई जरूरत नहीं, मुझे यहां आना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ दें, लेकिन आवश्यकता जितनी है उतना रखें, उसके बाद जो कुछ भी है, कम से कम मंदिर से कम मूर्ति से कम साधु से इतना सीख है कि उन्होंने जो जो छोड़ करके जो जो प्राप्त किया है उसकी तरफ देखें। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं, उनके पास तो बहुत कम है। कम और ज्यादा बाहर से नहीं होता, कम और ज्यादा भीतर से होता है। एक बार भीतर देखना शुरू करें कि हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास क्या छूट गया। मैं आपको आज मंदिर के बाबत कुछ बात कर लेने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मंदिर का विज्ञान, मंदिर का दर्शन, मंदिर की कला बहुत अद्भुत है। हमने कभी नहीं समझा, हमने कई कई बार दर्शन किया लेकिन शायद हमने ये समझा नहीं। कुछ नीचे से नक्श पान गुरु की राह में कि कोई हमसे पहले गुजरा होगा यहाँ से। कुछ पैरों के निशान है, ये मंदिर जो है ना, ये पैरों के निशान है। कुछ चिन्ह हमारे पास छूट गए हैं कि इस रास्ते पर हमसे पहले कोई चल के पहुंच गया है। ये मंदिर हमें सिखाता है, इस जगह आकर के हमें लगता है कि जहां हमें पहुंचना था हमसे पहले कोई इस रास्ते पर चल के पहुंच गया है। डरने की कोई बात नहीं है। मंदिर के द्वार पर आने से पहले क्या क्या करना चाहिए और आने के बाद क्या करना चाहिए, चलिए अपन शुरू करें। मंदिर करना, घर से मंदिर तक आने के लिए क्या क्या करना और मंदिर में भीतर जाने के लिए क्या क्या करना, आज ये बात मैं आपसे कर लेता हूँ, जितनी हो पाएगी उतनी। और फिर आप उसको जीवन में उतारने की, एक बार दर्शन की प्रक्रिया वैसी करने की कोशिश करना। मैं चैलेंज करता हूँ कि जिसने एक बार उस तरह से दर्शन कर लिए फिर वो दर्शन की प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर सकता, वो बिना दर्शन के रह नहीं सकता। मैं ये बात बड़े दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि आदमी अभी भी जिंदा है। मैं मर्दा आदमी को नहीं सुना रहा हूँ, मैं जिंदा आदमी को सुना रहा हूँ। अगर जिंदा आदमी सुन लेगा तो फिर नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर जो मरा ही होगा वो सुनेगा तो क्या सुनेगा, वो कुछ नहीं। क्या हुआ, हम घर से चलना शुरू करें, हम मंदिर की तरफ आ रहे हैं घर से। तो आपको मालूम है ना कि घर से हम जब बाहर निकलते हैं तब जरा सा चेहरा देखते हैं ना कि ठीक ठाक है कि नहीं है, कहीं कोई गंदी की तो नहीं लगी, दो चार पैसे भी अंदर डाल लेते हैं जेब में। ऐसे घर से दुनिया के लोगों से मिलने और मिलाने के लिए तो बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन भगवान से मिलने और मिलाने के लिए एक ही जगह है। और तुम दुनिया से मिलने मिलाने कई कई बार गए होगे, लेकिन एक बार 24 घंटे में भगवान से मिलने जा रहे हो। तो जब दुनिया से मिलने जाने के लिए जरा चेहरा देख लेते हो, तो भगवान से मिलने से जाने से पहले भी जरा अपना चेहरा देख लेना कि ठीक ठाक है, अपने अंदर इतनी शुद्धि है कि नहीं है, भगवान के यहाँ से जा रहे हैं। और जरा सी चैन सी डाल लेना, जरा दो चार पैसे भी जेब में डाल लेना, वहाँ की मुद्रा अलग है। दूसरे से मिलने जाना हो, बाजार में कुछ खरीदने जाना हो तो चार पैसे लेना पड़ता, देश विदेश जाना हो तो विदेश की मुद्रा लेना पड़ती है। मंदिर आना हो तो मंदिर की मुद्रा तो कुछ अलग है, मंदिर की मुद्रा है चावल। मंदिर जा रहे हैं, भगवान के घर जा रहे हैं तो एक हाथ में चावल, खाली हाथ मत लौट चले आना, नहीं तो खाली हाथ लौट जाओगे। खाली हाथ से आता है, खाली हाथ लौट जाता, भरे हाथ से आता, भरे हाथ से लौट जाता। ये मंदिर का विज्ञान है, यहाँ पर भरे हाथ से आ जाना। इतना कुछ दो दाने चावल को लेकर के आना, और देखो भाई चावल ही क्यों ला रहे हो, प्रश्न तो उठ सकता है कि चावल ही क्यों लेके जाए। चावल के साथ बड़ी विज्ञान जुड़ा हुआ है चावल के साथ, कि चावल क्यों ले जाते, चावल कैसे मिलता, आपने कभी सोचा। चावल के ऊपर एक परत होती है पहले धान की, उसके बाद होती है एक परत लाल लाल रंग की, फिर उसके बाद पिंकिंग होकर के चावल वाइट एकदम हमारे पास आ जाता, वो चावल हमारे हाथ में। अब आप देखना कि पहले नंबर हमने चावल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया। हमने पहले उसका धान का छिलका हटाया, फिर लाली हटाई। क्या ये भगवान के सामने है, भगवान ये चावल चढ़ा करके मैं कामना करता हूँ कि जैसे मैंने ये चावल धान का छिलका हटा के और लाली हटा के प्राप्त किया था, ऐसे ही भगवान मेरे ऊपर से घातिया कर्मों का धान अलग हो जाए, मेरे अंदर से अघातीय कर्मों की लाली दूर हो जाए, मेरे आठों कर्मों का नाश हो जाए। जिस तरह से मैंने एक स्वच्छ चावल को प्राप्त किया है, तो आपके चरणों में ये चावल चढ़ा के मैं कल्पना करता हूँ कि मुझे भी उसी तरह की प्राप्ति हो, मुझे भी अपनी उज्ज्वल आत्मा की प्राप्ति हो, कर्मों का नाश हो जाए। चावल को बोइएगा उगता नहीं, धान को बोइएगा उगती है। हे भगवान, ये चावल चढ़ा करके मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि बहुत बार उगा हूँ मैं, बहुत बार उगा हूँ, कई कई बार उगा, कई कई बार जन्म मरण मैंने किया है, अब और नहीं कहा जाता। अब ये जन्म मरण आपसे निवेदन है कि तोड़ दो मेरा जन्म मरण, ये बार बार उगना ना पड़े, मैं एक बार चावल हो जाऊँ, मैं धान नहीं रहना चाहता जो बार बार जमीन में उगती है, फिर टूटती फिर उगती है, ये बीज और रस की संतति मेरी नाश हो जाए, मुझे बार बार जन्म मरण ना लेना पड़े। और दूसरी बात, एक बात ध्यान और रखना कि चावल टूटे हुए मत ले आना। टूटे हुए चावल हमारे भीतर के टूटेपन को साबित करते हैं। अखंड चावल अक्षत प्राप्त है अक्षम निर्पाप्ति स्वाहा, मैं अक्षत प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं अखंड होना चाहता हूँ, मैं टूटा फूटा नहीं होना चाहता, तो कनकी मत चढ़ाना, टूटे फूटे चावल मत चढ़ाना। चंगे चंगे साबुत साबुत चावल चलाना क्यों चलाना, क्योंकि हमें वैसा होना। मैं नहीं कहता कि मिट्टी भर और खोवा खोवा भर के चलाओ चावल, मैं कहता हूँ कि दो चावल चलाओ लेकिन साबुत चावल चढ़ा देना तो ज्यादा कार्यकारी है। और इसके ढेर भरे चावल बिना पीने हुए बिना सोधे हुए और भगवान के सामने लौटा दिए तो खाने वाला नहीं। उससे ये ध्यान रखना, अक्षत अगर अक्षत चढ़ाओगे तो ही अक्षत हो पाओगे, टूटा चढ़ाओगे तो टूटे रह जाओगे। ये तो पहले ही खबर है हमारी, हमने टूटा चढ़ाया उसका मतलब हमारे अंदर कुछ टूटा था, और टूटा हुआ आदमी कभी पूरा नहीं हो सकता, जोड़ना होगा हमें, अखंड होना पड़ेगा। इसलिए चावल अखंड चढ़ाना, और आप चावल लेकर के मंदिर की तरफ निकल पड़े हो तो जरा ध्यान रखना कि दुनिया के लोगों से मिलने जा रहे हो, अगर अपने मित्र थे तो रास्ते में और लोगों से मिल लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान से मिलने जा रहे तो अब दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। रास्ते में दूसरे से नहीं मिलना, दूसरे से बात करने खड़े मत हो जाना कि काजी ये कैसे है तुम्हारा, अभी हम किसी से बात नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ एक हमारे ध्यान है कि अभी तो भगवान है और मैं हूँ, मेरे और भगवान के बीच में रास्ते की कोई चीज बीच में नहीं आ सकती। सिर्फ मेरे ध्यान में तो भगवान के गीत गाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए चावल हाथ में लिए हुए अपने घर से निकल पड़ना, और ध्यान रखना चमड़े की चप्पल पहन करके मत आना। चमड़े में एक प्रकार का एसिड होता है जो कि बहुत तामसिक होता है, और हमारे बदन से स्पर्श होने के बाद वो एसिड हमारे बदन में चला जाता है, हमारे अंदर तामसता आना शुरू हो जाती। और एक बात अगर ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती तो ध्यान रखना, चमड़ा कैसे मिलता है, किसी मरे हुए आदमी की लाश है और तुम लाश लेकर के कहाँ पहुंच रहे हो, मंदिर पहुंच रहे हो, चमड़े के जूते पहन करके, चमड़े का बेल्ट पहन करके, चमड़े की हैट लगा करके, ये चमड़ा नहीं है, ये तो लाश अपने ऊपर लाश करके भगवान के मंदिर में ले आ रहे हो। इसलिए जरा सोच विचार करके आना, मैं नहीं कहता कि इस तरह से आना किस तरह से आना, आपका विवेक। और मंदिर के दरवाजे पर आप पहुंच गए, मंदिर के दरवाजे पर आप पहुंच गए, और जरा ध्यान रखना कि अब साफ कर लेना। मैंने इतनी सारी प्रिकॉशंस क्यों बताई, आपको लग रहा होगा कि इतनी प्रकाशन की जरूरत है, इतनी सावधानी की जरूरत है। आपने कभी लेबोरेटरी देखी, आपने कोई साइंस का कोई विज्ञान का रूम देखा, आपने ऑपरेशन थिएटर देखा, आपने कई बार देखा होगा ऑपरेशन थिएटर, किसी का ऑपरेशन हुआ होगा और आप गए होगे, डॉक्टर ने कहा होगा भगवान यहाँ पर तो नहीं जा सकते भीतर, हम जा सकते भीतर, क्यों हर आदमी मंदिर में नहीं जा सकता, हर आदमी ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकता जिसके अंदर इतनी शुद्धि नहीं है, जिसके कपड़े शुद्ध नहीं है, जो अशुद्ध है वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। इसमें इतनी शुद्धि बना करके रखना, घर से शुद्ध हो करके चलना और यहाँ आकर के अच्छे रगड़ रगड़ के दो गुंडा पानी डाल रहे होते हैं कि तंग से चल रहे आगे बढ़ गए, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। सिर्फ एक अच्छी से धो लेना पानी, और अगर पानी की कमी है तो अपने घर पे एक लोटा रोज पानी डालना, पहले नंबर फिर भरना, क्योंकि कोई तुम्हें दूसरा भर के नहीं रखेगा तो तुम कहोगे लापता हो नंबर भरा, हम कभी कार कर रहे हो कोई चीज करके, तुम पानी की भरा हमें दोगे, तुम्हें भरना चाहिए था पानी, लेकिन हम यही देखते हैं अब कहा करे पानी में आ तो जो माली नाम तो नहीं पानी नहीं भर कर रखा था, हमें पानी होने तो तुम्हारा इंतजाम दूसरा करे, तुम अपना मंदिर होने का इंतजाम खुद नहीं कर सकते ना, इसीलिए ऐसे धोखे में नहीं रहना, तुम्हें खुद अगर करना है, तुम्हें खुद लाभ लेना है तो ये सारी चीजें खुद करना। बाहर बहुत अच्छे से पैर धो करके फिर उसके बाद भीतर आना, और भीतर आने से पहले जैसे जो कुछ भी लाए हो गंदगी वो सब बाहर के बाहर छोड़ के आ गए, ऐसी अब जरा मन की गंदगी भी बाहर के बाहर छोड़ के चले आना। मन की गंदगी कैसे तो नहीं छोड़ी जाती, पूरी तो नहीं छूटती, लेकिन इतना तो हो सकता कि मन में सद्भावनाएं बनी रहे हमारी, किसी के प्रति हमारे मन में राग द्वेष बहुत तीव्र ना हो, गुस्सा ना हो, बड़े शांत करना हमारे, इतना तो हम दूसरे के मंगल की भावना, सबके मंगल की भावना से भर करके हम मंदिर के पास प्रवेश करें। कहते हैं ये भावना का बड़ा फर्क पड़ता है। एक आदमी ने प्रयोग किया कि एक गिलास में पानी भर करके और ऐसे आदमी के हाथ पर पकड़ा दिया जो कि बहुत सद्भावना से भरा हुआ था, वो सद्भावना से भरा हुआ जो आदमी था उसके हाथ के गिलास का जो पानी था वो पेड़ में डाला गया, तो वो पेड़ आठ दिन के अंदर धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया। और एक आदमी के हाथ में वो गिलास पकड़ा गया जो कि बहुत क्रूर था, बहुत तीव्र परिणाम वाला था, उसके हाथ में वो गिलास पकड़ा करके फिर वो पानी उसमें पेड़ में डाला गया तो वो पेड़ मर गया। हमारी भावनाओं का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, हमारे ऊपर नहीं पड़ पाता असल में, क्योंकि हम तो अब पत्थर हो गए, हम तो जीव रहे नहीं, लेकिन अभी प्राणी उसमें है और बहुत संवेदनशील है वनस्पति का पानी, और वनस्पति के पानी पर जरा सी किसी की खोटी नजर पड़ जाती तो पौधा पौधा मुरझा जाता है। जरा सा उसके करीब कोई पहुंच जाए तो नाकबंदी होती है, वो अपने आप को सिकोड़ लेती है, उसको तकलीफ पहुंचती है, उसके पास संवेदनशीलता बहुत है। हमारी भावनाओं का प्रभाव पेड़ों के ऊपर होता, इसलिए जरा ध्यान रखना कि हम गंदी भावना से मंदिर में प्रवेश करके मंदिर को खराब ना करें। हमने आज अपने मंदिरों को अपनी भावना से खराब कर लिया। हमने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है, तो बाहर जड़ की क्रिया है, बाहर से कितने गंदे बने रहो, भीतर अच्छे अच्छे झलकत रह गए, तो ऐसे बहु नहीं हो कि भीतर तो जले रोशनी और बाहर आते रह गए अंधेरे, ऐसे नहीं है। जन के भीतर लाइट जल गई उसके बाहर जरूर लाइट जली होगी, बिना उसके हो नहीं सकता। तो बाहर और भीतर दोनों तरह की शुद्धि करके आप कहाँ पहुँच गए, मंदिर के दरवाजे पे आ गए हैं। अब जरा ध्यान रखना कि मंदिर के कम से कम तीन पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन है जहाँ की हमने पैर धोए हैं, दूसरा पोर्शन है जहाँ की पहुँच करके और हमें परिक्रमा लगाने की सुविधा है, और तीसरा बड़ा सेपरेट एकदम तीसरा खंड होता है जहाँ की गर्भगृह होता है, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। अब तो हमारे मंदिर नहीं बनते, अब तो हमारी बिल्डिंग बनती है। हम जितना शो कर लें उतना मंदिर, लेकिन पहले मंदिर ऐसा नहीं बनता था। पहले बड़ा विज्ञान के हिसाब से मंदिर बनता था, और विज्ञान के हिसाब से जो मंदिर बनेगा उसमें एक जगह तीन खंड जरूर होंगे कि बाहर गेट अलग है, आप दूसरे गेट पर जैसे ही आए हैं उस गेट पर एक घंटा लटकता हुआ मिलेगा। घंटा क्यों लटका दिया भाई, क्या जरूरत है घंटा लटकाने की? अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो दो बातें ध्यान में रख, और समझ के साथ करने लगे तो शायद हमारे जीवन में उन चीजों का ख्याल रहे, दुनियादारी भूल जाए, ये सारी चीज हमें ध्यान में रहे। हम भीतर घूम रहे हैं तो निश्चय 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 जो है मैं प्रवेश करता हूँ, मैं प्रवेश करता हूँ, मैं प्रवेश करता हूँ। जो प्रवेश करने से अगर किसी को तकलीफ हो तो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हम सब लोग भी भगवान के दर्शन करना है, नई भगवान के दर्शन करना है। मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे लोग भी होंगे जो मेरी आँख से नहीं दिख रहे हैं, उन सबके लिए भी अगर कोई मेरी वजह से तकलीफ हो तो भैया मुझे क्षमा करना। जब रास्ता देना, रास्ता देना, रास्ता देना, मैं भी प्रवेश करना चाहता हूँ। निश्चय निश्चय कि इतने सारे अर्थ हैं, तब हम जाकर के भीतर प्रवेश करते हैं। और जाते ही साथ पहले नंबर घंटे की ध्वनि करते हैं। ध्वनि होती घंटे में जो एक प्रकार की बड़ी गहरी ध्वनि निकलती है, ऐसी ध्वनि नहीं निकलती। घंटा भी अलग किस्म का होता है, ये झालर अलग बात होती, घंटा अलग होता, त्रिकोण होता, जिसमें एक बार ठोकने के बाद जो हल्के से बहुत देर तक वो आवाज गूंजती रहती। और इस आवाज से क्या होता, ये आवाज बेकार नहीं है, ये इस आवाज से क्या होता, जैसे कि आप देखो कि पानी के अंदर एक तो पत्थर फेंक दिया या हवा आ गई तो बहुत सारी लहरें उठना शुरू होती, और एक के बाद एक लहर फैलती चली जाती, किनारे तक फैल जाती, और उस लहर के साथ ढेर सारा कचरा किनारे पे जाकर के फसल करके वहां पहुंच गया। ऐसे ही एक मैसे हमारे घंटे में से ढेर सारी लहरें निकलती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पानी का पार्टिकल से टकराते टकराते और दूर तक फैल जाती। बीच में जितनी भी गंदगी थी, हमारा मंदिर में जो अशुद्धि थी, वो घंटे की जरा सी आवाज से दूर हटना शुरू हो जाती, मंदिर पूरी साइज हो जाता, मंदिर पूरी। और ध्वनि ध्यान रखना कि ध्वनि से ज्यादा महत्व विद्युत का है। ध्वनि आजकल बिजली में बदल जाती है, और जैसी ध्वनि होती है और वो बिजली में बदलना शुरू हो जाती, हमारे मंदिर में एक तरह की बिजली दौड़ जाती है, और वो बिजली सारे लोगों को समझ करने के लिए सहायक होती। मंदिर की घंटी का मतलब यह नहीं है कि जोर जोर से घंटा ठोकने बैठ जाओ, बड़े धीरे से घंटी बजाना, और बहुत धीरे से बजा करके दो मिनट उस घंटे के पास आप खड़े होकर देखेंगे कि ऊपर से आवाज बरसना शुरू हो गई आपके ऊपर, और आप धीरे धीरे शांत होते चले जा रहे हैं। वो आपके लिए प्योर करेगी वो आवाज, इतना महत्व उस घंटे का था कि एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए, तीन सेकंड के लिए घंटा बजा के उसके नीचे घर के देखना, और घंटे की आवाज तुम्हारे अंदर बैठ जाए। ये इस बात का प्रतीक है कि हे भगवान, बाहर के सारे कोलाहल को मैं भूल गया हूँ, मुझे बाहर की कोई चीज ध्यान नहीं रही, ये पवित्र आपके मंदिर की ध्वनि मेरे कान में है, मेरा सारा मेरे कान पवित्र हो गया है। अब आपके आपकी ध्वनि के अलावा मेरे कान में और कोई ध्वनि नहीं है। ये झूठा उस बात का प्रतीक है। इस तरह की ध्वनि को लेकर के हम मंदिर में प्रवेश करें। हम मंदिर में प्रवेश हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे हमने दूसरे खंड में प्रवेश किया और भगवान की छवि हमें हल्की सी दिखना शुरू होगी, तो भगवान की छवि जैसे ही दिखे और आप नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। अनंतों को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, और सीधे जाकर के भगवान के सामने पहुँच जाना। लेकिन ध्यान रखना, कभी आपने ध्यान दिया हो कि दरवाजा बहुत छोटा होता है, मैं दरवाजे की बात भूल गया। अब आज के मंदिरों में दरवाजा बहुत बहुत बड़ा होता है, पहले के मंदिरों में दरवाजा बहुत छोटा हुआ करता था, और छोटे दरवाजे और छोटी खिड़की के पीछे एक रहस्य था।
छोटा दरवाजा है, आदमी ऑटोमेटिक अगर ये भी झुकना चाहे तो उसको झुकना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना कि बिना झुके भगवान नहीं मिलता, बिना झुके कभी किसी को भगवान नहीं मिलता। आपने रामायण सुनी होगी, और मैं तो सुन रहा था एक दिन कि जब हनुमान रामचंद्र जी से मिले तो पहचान नहीं पाया रामचंद्र जी हनुमान को कि तुम हनुमान हो। तो हनुमान कहते बोले हम अपने भक्त को भी नहीं पहचान पाए। मैं अपने भक्त को पहचानूं कैसे, भक्त तो अपने ज्ञान की अकड़ में था, और जब तक भक्त को अपने ज्ञान की अकड़ है तब तक भगवान उसको पहचान नहीं सकते, और ना वो भगवान को पहचान सकता है। इसलिए अकड़ के भगवान के घर में प्रवेश मत करना, बहुत झुक करके बहुत संभल करके प्रवेश करना। छोटा दरवाजा इस बात का प्रतीक था कि तुमने अपना अहंकार मिटा करके तुम भीतर घुस रहे हो, तीन लोक के अधिपति के घर में जा रहे हो, जो तीन लोक का नाथ है। तो अब पहुंच करके कम से कम तीन बार नमस्कार करना। एक बार पहले नंबर जैसे ही हमने देखा तो पहुंच करके पहले नंबर हम नमस्कार करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर बैठ करके फिर नमस्कार करेंगे, ये दो नमस्कार हो गए। तीसरी बार खड़े होकर के साइज पर करेंगे, नौ बार नमो का मंत्र करेंगे, फिर बैठ करके नमस्कार करेंगे। ये दो नमस्कार आरंभ के अहंकार तोड़ने के लिए है, और एक नमस्कार जो साइज पर के साथ नमस्कार किया गया है वो हमारा मोक्ष छोड़ने के लिए है। हमें चाहे कि अब कोई चिंता नहीं है, शरीर का हमने भान छोड़ दिया, शरीर का भान छोड़ करके सिर्फ भगवान का ध्यान करना, ये कायेश्वर कहलाता। एक कायेश्वर दो नमस्कार, एक दो बार अहंकार तोड़ना, एक बार ममकार छोड़ना, अहंकार और ममकार छोड़ना, इनका त्याग करना ही तो त्याग धर्म है। हम ये क्या ये बात वहां से नहीं सीखते, हमें सीख लेनी चाहिए। और जैसे ही हम भगवान के सामने पहुंचे हैं, हमने तीन बार नमस्कार किया है, इसके बाद हमें अभी प्रतीक्षा देनी है और गर्भगृह में प्रवेश करना बाकी रह गया, अभी काम पूरा नहीं हुआ। और हमें तीन बार प्रतीक्षा क्यों देनी है, तीन बार क्यों करना है? इसके पीछे भी कोई रहस्य होना चाहिए। कोई भी काम होता है मन से होता है, वचन से होता है, शरीर से होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता, तीन तरह से होता है। या तो खुद करता है, आदमी दूसरे से करवाता है, या कोई करता है तो उसकी प्रशंसा करता है। तीन तरह से ही होता है, पहले प्लानिंग करता है, फिर कलेक्शन करता है, फिर बाद में शुरू कर देता है संभ्रम समारंभ। तीन तरह से होते हैं, तीन तरह से तो हमारे लिए कहा गया है रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीन ही रत्नत्रय है, और सच्चे देवता गुरु भी तीन ही है। तीन की संख्या के बाबत क्या कहना, तीन बहुत महत्वपूर्ण है। और तीन दिन के बाबत एक बात और कह दूं कि तीन दिन में अग्नि की आयु है, तीन दिन की, तीन दिन के बाद अग्नि समाप्त होती, आप खारी उठाते तीन दिन के बाद। जब अपने आप अग्नि समाप्त हो जाती है तब आप मुर्दे के लिए खारी उठाने के लिए जाते, क्यों तीन दिन के बाद जाते, उसके पीछे भी रहस्य है। और तीन परिक्रमा क्यों लगाते, उसके पीछे भी रहस्य है। और कहते हैं कि तीन दिन तक आदमी के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड होता है आदमी के, हर आदमी के चारों तरफ। और जब आदमी मरता है तो तीन दिन तक वो आकाश में रहता है, उन प्रदेशों में वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड उसका इफेक्ट रहता है, और तीन दिन तक उस जगह की शुद्धि नहीं मानी जाती। तीन दिन में जो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो फील्ड, जब उसके परमाणु भी नष्ट हो जाएंगे उस मुर्दे के आदमी के, तब जाकर के वहां शुद्धि मानी गई है। तीन का बड़ा महत्व है, आप समझ गए होंगे कि तीन परिक्रमा क्यों हमें देनी चाहिए। मन से भी झुकता हूँ हे भगवान, वचन से भी झुकता हूँ हे भगवान, और अपने शरीर से भी झुकता हूँ हे भगवान, तीनों तरह से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और अब जाकर के हम सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में जाकर के प्रवेश करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से बाहरी गदगदियन बबू उपलब्ध नेत्र द्वयम साबुन, हे भगवान अद्भुत हुआ, अद्भुत हुआ, मैं मुझसे बोलते नहीं बन रहा, मेरी वाणी गदगद हो रही है, मेरे सारे शरीर में पुलक उठ रहे हैं, मेरे सारे शरीर में आनंद छा गया है, और मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। क्या कभी हमने ऐसे दर्शन किए, क्या कभी हमने ऐसे दर्शन किए कि हमसे बोलते ना बना हो भगवान के सामने जाकर के, हमने भगवान के सामने जाकर ज्यादा से ज्यादा बोलना शुरू किया कि तुमने जानते भगवान हमें कितनी तुम्हारी गिनती आती है। कभी ये सोचा कि भगवान के सामने जाकर के सिर्फ हाथ जोड़ा हो और गला भर गया हो कि भगवान अब कैसे आपकी प्रार्थना करूं, आप तीन लोग के नाथ है, मेरे पास क्या है आपकी प्रार्थना करने के लिए। सारे शरीर में आनंद हो गया हो और आंसू बहना शुरू हो गया हो कि आज अद्भुत, मैंने कहा पहली बार जीवन में मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैंने आज दर्शन आपसे कर लिया। इस तरह से अगर जिसने दर्शन किए हैं और भीतर घुस गया है, फिर आप देखेंगे कि भीतर एक बहुत बड़ा गुम्बद, और गुम्बद इस बात का सूचक है कि इस गुम्बद के चारों तरफ जहां से भी चलो वहीं पर वापस लौटोगे, और यहां पर जो भी बोलोगे वो तुम्हारे ऊपर वापस लौट करके आएगा। ओमकार ध्वनि यहां पर बोलोगे तो ओमकार तुम्हारे ऊपर वापस लौट के आएगा। अगर यहां गाली दोगे तो गाली भी तुम्हारे ऊपर बरसेगी। यहां पर जो भी करोगे वो सब तुम्हारे लिए है। यहां पर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, यहां पर बुरा बोलोगे तो बुरा भी तुम्हारे ऊपर ही बरसेगा। तुम ऊपर बोल के देख लो, गुम्बद में बोल के देख लो, सारी आवाज इकट्ठी होकर ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर गिर रही हो।
अगर हम ओंकार ध्वनि करते हैं मंदिर में आकर के, तो ओंकार का, मंत्र का और ध्वनि का बड़ा महत्व है। मैं ध्वनि के बारे में आपको बात कर दूं कि पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चलते थे, जब इलेक्ट्रिक से सारा काम होता था, इसकी हृदय की चिकित्सा के लिए, अब तो अल्ट्रासोनिक कार्डियोग्राम चलते हैं। एक पराशब्द ध्वनि का खोज की गई और ये पराशब्द ध्वनि जो है हमारे घंटे के अनाज नाक से निकलती, हमारे मंत्र के उच्चारण से ये पराशब्द ध्वनि उत्पन्न हो सकती। ऐसी हल्की हल्की ध्वनि, इस ध्वनि के माध्यम से क्या नहीं हो सकता। ध्वनि के प्रयोग किए गए, गाय ज्यादा दूध देने लगी, ध्वनि के प्रयोग किए गए, पेड़ ज्यादा जल्दी बढ़ने लगा, तो इस ध्वनि के माध्यम से हमारे अंदर की भावनाएं भी शुद्ध हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर आकर के हमने ओंकार, जैसे मंदिर के अंदर गर्भगृह के भीतर पहुंचे, हमें कुछ नहीं कहना है वहां पर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओंकार ध्वनि हमारी गूंजेगी। जैसे ओंकार नाद होगा, ध्वनि के माध्यम से वहां पर विद्युत का चीज बनना शुरू होगा, आयनाइजेशन शुरू होगा, आयुष बनना शुरू होंगे और पूरा का पूरा फिर विद्युतमय हो जाएगा। हमारे ऊपर वो बिजली बरसना शुरू हो जाएगी और हम देखेंगे कि हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। ये प्रक्रिया हमने शायद कभी न की होगी। हमने मंदिर को हमेशा नकारने की कोशिश की है कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। तो ध्यान रखना, कभी ऐसे किसी समर्थन में मत कर देना कि मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मंदिर मिटा दो। अगर वो ये कहता कि मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है और मंदिर मिटा दो, तो मैं उसे औरंगजेब से कम नहीं मानता। औरंगजेब ने आखिर क्या किया, मुगलों ने आखिर क्या किया, मुगलों ने भी तो यही किया कि हमारे मंदिर मिटाए, हमारी मूर्तियां मिटाई। क्यों मिटाई? क्योंकि जिसके पास मूर्ति और मंदिर नहीं है, जिसके पास भगवान नहीं है, वो आदमी यहां पर कर कर भटक करके मर जाएगा, वो अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाएगा। ये मंदिर और मूर्ति हमें अपनी आत्मा का ख्याल कराने के लिए थे कि भैया एक बार देख, दुनिया की सारी चीज दुनिया में मिल सकती, बाजार से जो चीज कभी नहीं मिली, जो चीज घर में कभी नहीं मिली, जो चीज कभी दुकान में नहीं मिली, अगर आदमी प्राप्त करना चाहे तो वो चीज मंदिर में मिलकर बैठ करके मिल सकती। जिसको मंदिर में बैठने की कला आती है, वो मंदिर से कुछ ले सकता है। मंदिर का ज्यादा कोई अर्थ नहीं होता, मंदिर का अर्थ निकालना चाहो तो कुछ अर्थ नहीं निकलता। ऐसी बिल्डिंग तुम्हारे घर में इससे बड़ी अच्छी है, इस बिल्डिंग और उस बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं, लेकिन मंदिर में आकर के मंदिर से कुछ ले लेने की, मंदिर के उपयोग, मंदिर का उपयोग कर लेने की कला हमारे पास अगर है, तो मंदिर हमारा बनाना सार्थक है। हम अनाथालय बनाएं, हम धर्मशाला बनाएं, हम बहुत सारी चीजें बनाएं, लेकिन ध्यान रखना, एक विद्यालय बना लेने से, एक अनाथालय लगा बना लेने से, एक औषधालय खोल देने से कभी तुम्हें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जब भी भगवान मिलेगा, मंदिर के द्वार पर, मंदिर के द्वार से यात्रा होगी शुरू भगवान के घर की। मैं ये नहीं कहता कि कुछ मत करो, लेकिन अगर जो ये कहते हैं कि मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे मैं कहता हूं तो फिर घर की भी कोई आवश्यकता नहीं। जिसको मंदिर की आवश्यकता नहीं, उसको घर की भी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और सब चीजें करते हो तुम और मंदिर को अगर नकारते हो, तो मेरी दृष्टि में तो औरंगजेब से कम नहीं हो। हमारे मंदिर और मूर्ति हमें क्या क्या सिखा देती है, आपने ये देखा होगा। हमें इन मंदिर और मूर्ति से पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। मैंने आपसे अभिषेक की बात शायद एक दिन की थी कि इसके बाद हमें अभिषेक करना है, और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, जो हमारे हाथ में गंदे तक आएगा, वो छोटी मोटी बात नहीं है। ये ध्यान रखना, क्या होता है धातु में जब मंत्रित किया जाता है धातु के लिए, तब उसमें विशेष प्रकार से वो धातु मंत्रित हो जाती है। अगर मंत्र नहीं भी है उस धातु में, तो धातु के अंदर इतनी पावर होती है कि उसमें कंडक्टिविटी, चालकता होती है। और जब पीएच वैल्यू आप नहीं जानते हैं, मैं आपको सिर्फ जनरल बताऊंगा, जिनके समझ में आए, अगर आए और नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना समझ करके चलना कि कोई पीएच वैल्यू होती जो पानी में कम होती है और अन्य चीजों में बढ़ती चली जाती है, उनसे सबसे हम अभिषेक करते हैं। पानी से हमने अभिषेक किया तो पानी की कोई पीएच वैल्यू थी, पानी में एक चार्ज था और मूर्ति में एक चार्ज था, दोनों मिलकर के वहां से आयंस निकलना शुरू होते हैं, नेगेटिव आयंस निकलना शुरू होते हैं, मूर्ति से ढेर सारे आयंस निकलना शुरू होते। और आपने देखा होगा कि पूजन और प्रक्षाल करते समय शरीर पर वस्त्र कम से कम रखे जाते हैं, ताकि हमारे शरीर से वो आयंस सीधे सीधे टकराएं और हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोसेस है, मैंने आपको एक बार कहा था कि हीमोग्लोबिन का मतलब सिर्फ ये होता है इतना कि हमारे अंदर ऑक्सीजन को सही तरह से ले जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे, वो हीमोग्लोबिन प्रोसेस हमारे आयनाइजेशन की वजह से सुचारू रूप से चल जाती। हमें अनायास प्रक्षाल करने से, अभिषेक करने से इतना लाभ मिल जाता कि हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता। हमने ये सारी क्रियाएं ढंग कहकर के छोड़ दी, हमने रूढ़ी कहकर के सारी क्रियाएं, हमें फुर्सत ही नहीं, हमें इतनी फुर्सत बितानी चाहिए। एक बार अभिषेक करके देखना, और मैं चैलेंज करता हूं, अभिषेक ऐसा नहीं किया जाता
अभिषेक का संवेदन तो तब होगा जब पहली बार तुम मूर्ति के ऊपर कपड़ा लगाओगे, और बाद में मुझे आकर के बताना कि कहां कपड़ा कितने धीरे से लगा था, कहां कितनी जोर से लगा था। पत्थर वही है, जो पत्थर आंख पर है वो पत्थर यहां पर है, लेकिन आप देखेंगे अगर थोड़ा भी आदमी समझदार आदमी होगा, अगर वाकई में पशु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आदमी के अंदर पशुता होती आदमी पशु हो जाता है, जिसके अंदर संवेदनशीलता मर जाती है उसकी बात नहीं कर रहा, जो संवेदनशील है वो जरूर आकर के कहेगा कि महाराज जी आपने ठीक कहा था। क्या कहा था? कि जब मैंने कपड़ा आंख के ऊपर ऐसा किया तो मुझे लगा कि भगवान की आंख है, जरा धीरे से पहुंचो, और जब मैंने यहां पहुंचा तो जोर से पहुंच दिया है भगवान को, लेकिन तब पर वही है जो आंख में था वो यहां पर था। इतनी संवेदनशीलता आपको उस समय महसूस होती कि ये भगवान की आंख, भैया धीरे से पहुंचो। लेकिन हम यहां पर रोज देखते हैं कि हमने एक पुजारी लगा के रखा है जो पहले नंबर तो फटका टाइम करता फटकार देता, और फिर उसके बाद उसको जोर से रगड़ करके फांस देता, उसको कोई संवेदनशीलता नहीं है, और हम उसके पैसे देकर के अभिषेक करवा लेते हैं। हमने कभी अभिषेक करने, हमारे भगवान तो पूज गए, होगा काम, तुम चढ़ा दो, तुम्हें अभिषेक कर लो, हमारे तो घंटी बजा दें, थोड़े से द्रव्य चढ़ा दें, इसकी हमारा काम निपट गया। ये मंदिर का विज्ञान हमें नहीं मालूम था, इसी वजह से हमने अपने मंदिर को मंदिर होते हुए मंदिर नहीं रहने दिया, हमने अपने मंदिर को पूरा बिगाड़ करके रख दिया। हमने खिड़की दरवाजे इतने बड़े बड़े कर दिए कि खूब हवा आनी चाहिए, लेकिन हवा आने से कुछ नहीं होता, मंदिर में गंदगी रहे और हवा आती रहे तो कुछ नहीं होता। मंदिर तो शुद्ध तब होता जब हमारी भावनाएं शुद्ध है, जब हम कपड़े और वस्त्र पहन करके शुद्ध आए, पैरों का शुद्ध कपड़ा पहन के आ जाओ, फिर बाद में भीतर चले जाओ, होते थे सोला की धोती बदल लो, यहाँ से बदल लेगा और क्या सब्जी उतारने का डर होते अंदर सिद्धि ऐसे सिद्धि नहीं होती भाई साहब, ऐसे सिद्धि नहीं होती। हंसने में तो बहुत, एक मिनट में हंस लोगे, अपनी बात पर रोना चाहिए कि हमने आज तक क्या किया, अपने हाथ से अपना मंदिर बिगाड़ दिया। हम मंदिर में अशुद्ध कपड़े पहन करके आए और हमने कहा कि मंदिर के भगवान तो शुद्ध है, तो हम तो भगवान के खाने बिना के हम शुद्ध कैसे रह गए, शुद्ध हो जाए तो ठीक नहीं रहना, भगवान ने कभी तुम्हारा सिद्ध कर देते, तुम शुद्ध हो गए चाहो तो शुद्ध हो जाओ, न हो गए चाहो तो भगवान तुम्हें सिद्ध करने नहीं आएंगे यहाँ पर। हम शुद्धि पूर्वक आए मंदिर में और अपने घर पे जो है शुद्ध सोला की धोती पहन करके, एक धोती अलग रख लो घर, उसकी धोती रखते एक धोती अलग रख लो, तो जब मंदिर ही जब पैर के जो और जो शुद्ध धो करके पहन के जाएंगे, और रास्ते का अगर विवेक तुम्हें समझ में आता हो कि मंदिर खींचे हैं हम तो रास्ता में, तो ठीक कैसे जाओ, नशे में आओ तो ठीक है, शराब पी हो तो ठीक है, ठीक है, और पांच गाड़ी से आई है अगर, तो हम बिल्कुल सीधी बात कहता हूँ, गुरु जगह अगर आपको तो एक बार चोट पहुंच जानी चाहिए, मैं तो इस तरह कहता हूँ बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए मंदिर आने में, तुम्हारा जी ठीक है अगर रास्ता में देखते हो, हम भी निकलते रास्ते में से, हम भी निकलते रास्ते में से, सब निकलते हैं, लेकिन देख करके आता जमीन देख करके आगे चाहता आगे की क्या चीज जमी है, सीधी तो नहीं है, सीधा तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, तुम देख करके आगे पैर में पहन दिए जीते और देखी क्या होती और चल जाए, होते देख रहा होते देख रहा तेरा मन भर जा रहा। ऐसे नहीं जाया जाता मंदिर, मंदिर बहुत संभल के जाया जाता, घर से लेकर के मंदिर तक के भाव में उतनी विशुद्धि आनी चाहिए, जो विशुद्धि मैंने आपको बताई, कोशिश करना कि इस तरह की विशुद्धि हमारे मन में आए, हमारे भावों में आए, हमारे विचारों में आए, हमारे शरीर से भी हम शुद्ध हैं, तो हमें इसी मंदिर से हमें पास की शिक्षा मिल सकती है। गुरु के पास ऐसे जाके बैठ जाएंगे, उनको कोई भी हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, हमारी कोई सिद्धि नहीं है, हमें गुरु से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। गुरु को और मंदिर को आपसे कई बार हानि भी हो जाती है, आपको लाभ नहीं हो पाता, उनको उनको हानि पहुंचा के आप चले जाते हैं, आप सोचते हैं हम लाभ पहुंचाने आए थे, उनको उनकी हानि पहुंचा के चले जाते हैं। यहाँ पर अच्छे भाव से आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि मंदिर में आते ही साहब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी जगह पर हम आ गए, और अब तो हमें मंदिर में आकर के नहीं लगता कि हम अच्छी जगह पर आ गए, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अपनी गलत भावनाएं छोड़ के गए थे। यहाँ पर हम अपनी गलत भावना अगर छोड़ के जाएंगे तो ये यही नहीं आएंगे, ये सिद्धांत है। अगर हम दो बात गाली की यहाँ बोल के जाएंगे तो बहुत समय तक शब्द यहाँ गूंज के रहते, हमें सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन उनका शख्स हमारे शरीर के ऊपर होता। आपको विज्ञान की खोज बहुत बहुत दूर चली जा रही है, वो कह रहे हैं कि जो भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ गाई का 2000 साल पहले बोला था उसको भी हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। दो वर्णनाएं शब्द वर्णनाएं आज भी है, शब्द ब्रह्म है ऐसा कहा गया है कि शब्द की शक्ति बहुत है, हम जो शब्द यहाँ बोले जो विचार हम बोले उनकी वर्गनाएं निकलती है, हम ऐसे गंदे विचार यहाँ न रखें, ऐसे गंदे शब्द न बोले, अपने शरीर को शुद्ध करके आए तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ हम मंदिर में आए हैं और मंदिर में शांति से आकर के बैठ जाए और फिर मंदिर का उपयोग करना सीख लें। मंदिर से ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी, जो इस तरह के धोखे में है कि नहीं हमें इससे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, वे कम से कम अपने इस धोखे को मिटा दें, इस भ्रांति को मिटा दें। संसार में आए हैं तो संसार में एक भ्रांति आदमी के अंदर यही पलती जो मैंने सबसे पहले कही, तो उसको ये लगता है कि हम पहली पहली बार आए हैं, और मंदिर में हमें आते समय उसको ये नहीं लगता कि हम पहली पहली बार आए हैं। रोज लगना चाहिए मंदिर में आते समय कि हम पहली बार यहाँ पर, आज तो सौभाग्य हमारा हुआ कि सूरज का उदय हुआ और हम स्वस्थ हैं और कम से कम घर के कुंज लेकर के मंदिर तक आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हम बहुत भटके इस संसार में, लेकिन हे भगवान आज मुझे कम से कम इतनी आपने सद्बुद्धि दी कि मैं चार कुंज लेकर के आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आ गया। अगर इन भावनाओं के साथ हम आएंगे हमारा मंदिर आना सार्थक होगा, हमारा त्याग करना सार्थक होगा। ये मंदिर हमें त्याग सिखाता है, ये मंदिर हमें निराकार की पूजा सिखाता है, साकार से परे होकर के दिखाता है, संसार से परे भी कोई चीज है। ये बात हमें मंदिर से सीख लेनी चाहिए और वक्त रहते सीख लेनी चाहिए। जिस मंदिर से त्याग कैसे सीखते, हम चार कुंज चढ़ा करके यहाँ जाते, अपनी भावनाओं को अच्छा बना करके आते और दुनिया की गंदगी छोड़ करके जाते, क्या ये कम त्याग है? ये त्याग हमें मंदिर से रोज सीखना चाहिए। कम से कम इतना त्याग तो हम कर ही सकते हैं और बाकी त्याग करें या ना करें, भाई मंदिर का उपयोग, मूर्ति का उपयोग हमें वक्त रहते अभिषेक पूजन तत्काल और बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। मंदिर की गंध और मंदिर की तिलक की बात और रह गई, क्यों लगाना चंदन और क्यों छोड़ना सुगंध। हर मंदिर की एक स्पेशल गंध होती, हर आदमी के घर की एक स्पेशल गंध होती, हर आदमी के शरीर की एक स्पेशल गंध होती, जिससे मालूम करता कि ये फलाना आदमी है। कुत्ता सूंघ करके आदमी को बता देता कि ये आदमी फलाना है, उससे उसकी शक्ति बहुत तीव्र है कि बता देता कि ये कपड़ा जो है इस आदमी से छूट गया और इसकी गंध इसमें पकड़ लेता, फौरन चोर पकड़ा जाता। इसी तरह हमारे शरीर की गंध, इसी तरह हमारे घर की, हमारे एटमॉस्फेयर की, तो मंदिर की भी एक स्पेशल गंध होती है। मंदिर की गंध चंदन की गंध से कम नहीं होती, जितनी चंदन की शीतलता, जितनी सुगंध होती है, उतनी सुगंध हमें मंदिर में प्रवेश करते ही साथ उतनी सुगंध आनी चाहिए कि वाकई हम मंदिर में पहुंच गए। जैसे हमें घर पहुंचने पर लगता है कि यहाँ की खुशबू तो अलग है, ये घर है हमारा, ऐसे ही हमें कभी नहीं लगता यहाँ पर कि ये हमारा मंदिर है, ऐसी खुशबू नहीं आती यहाँ पर कि ये मंदिर है। हमें उस तरह की खुशबू का भी इंतजाम करना चाहिए। मैंने सुना कि कल सुगंध दसवीं थी, लेकिन किसी आदमी ने यहाँ पर सुगंध करने की कोशिश ही नहीं। सुगंध दसवीं थी, बहनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं, हम भाई भाई एक दूसरे से मिले नहीं कि तुम्हारे जीवन में मेरी वजह से कोई सुगंधी आती है तो भैया मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है, ऐसी सुनावनी आने वाली है, ऐसी सुगंधी पर्व निकल गया। सुगंध फैलाने के लिए सुगंधी पर्व था, अपनी भावनाओं को उद्वेलित करने का था कि मेरा स्वामित्व है, मैंने 1000 रुपये कमाए, 100 रुपये मैं सबके लिए देता हूँ। वो देना नहीं था, वो तो हमें लेने और देने का व्यापार था। जिंदगी में आए हैं, किसी से दो चीज हमें लेना है, किसी से दो चीज देना है, पता नहीं किसका क्या क्या किसका करना है। तो जिंदगी में बहुत बहुत चुकाना है, लोगों का क्या क्या देना है। अगर हमने एक चीज किसी की ज्यादा दे दी तो ये मान के चलना कि हमें इसका देना होगा, कि आज हमें यहां बैठ करके देना पड़ा, हमें देना नहीं पड़ा, उसने अपना ले लिया है, अच्छा हुआ इस जीवन में इसका सिख दिया, हमने ज्यादा भी दे दिया तो इसका हमें चुकाना होगा। इससे हमें कम मिला है तो कोई बात नहीं है, हमें उससे मिलना था इसलिए मिला है। ऐसी भावना से सुगंधी पर्व था, हमने वो सुगंधी पर्व भी खत्म कर दिया। फिर जितने के पीछे कि तुमने हमें 4 पैसा जितनी चीज कम दी, तुमने हमें 4 पैसा की ज्यादा दी, हमने तो ज्यादा भी दे दी, तुमने कम की दी, दो पाई तुमने कम की। अरे तुम्हारे भाग में जितने की चीज थे कितने मिल गए, उसके भाग में जो थी उसको तुम्हें देना पड़ी, तुमने क्या दी, तुम यहाँ क्या दे सकते, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो लेने देने का व्यापार तो सिर्फ हमारा वास्तव्य है कि हम एक दूसरे से मिलना सीख लेते हैं मंदिर में आकर के। हमें मंदिर में आकर के वास्तव्य की भावना, सुगंध की भावना बनानी चाहिए, एक दूसरे के जीवन को पवित्र करने की वासना बनानी भावना बनानी चाहिए। हमें स्वयं पवित्र हो, दूसरे को हमारे माध्यम से पवित्री मिले, पवित्रता मिले, दूसरा व्रत में आरूढ़ हो, हम भी व्रत में आरूढ़ हो। हम व्रत नहीं कर पाते भैया, हमसे कुछ नहीं होता, तुम्हारी तरफ से आप करो, हमारे पैसे से आप करो, आप जितना हमसे बनता आप करो। इस तरह की भावना लेकर के हम मंदिर में परस्पर की मित्रता की भावना, परस्पर मैत्री की भावना लेकर के मंदिर में आना चाहिए और तभी हमारा त्याग, तभी हमारा मंदिर आना सार्थक होगा। ये मंदिर और मूर्ति हमें त्याग सिखाती है, हमें वक्त रहते त्याग सीख लेना चाहिए। बोले भगवान महावीर का
Bye. कालम Thank you.
हैं।